ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
Now you're listening ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। सो जैसा कि गोधुली में हम आपको ऐसी गोंडा की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज से मिलाते हैं जो अपने क्षेत्र में जिन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया होता है और वो हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा के स्रोत होते हैं। तो आज उसी कड़ी में हमारे बीच में मौजूद हैं सुनील कुमार आनंद जी, जो कि प्रधानाध्यापक हैं कंपोजिट विद्यालय बाबा मठिया ब्लॉक वजीरगंज जिला गोंडा के। सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं आपके अपने इस शो में।
बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आप किसी ना किसी ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं और एक ऐसा काम कर रहे होते हैं जो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है, तो सबसे पहले तो हम आपके बारे में ही जानना चाहेंगे कि आप अपना एक संक्षिप्त विवरण दें जिसमें आप हमको ये बताएं कि आप अपनी फैमिली के बारे में, माता पिता के बारे में, आपकी पैदाइश कहाँ हुई और अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में।
जी सर, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गोंडा का रहने वाला हूँ और वहीं वजीरगंज ब्लॉक के पास एक गाँव है अशोक पुटिकिया। एक किसान परिवार में मैं जन्म लिया। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री चतुरी रामानंद और माता शांति देवी, जो इस समय दोनों लोग हमारी दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हमारे भाई हैं और तीनों भाइयों में मैं सबसे छोटा हूं। बड़े भाई शिव प्रसाद आनंद और बीच में गया प्रसाद आनंद, सब लोगों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। एक संयुक्त परिवार है और एक किसान के परिवार से निकलकर बेसिक में एक शिक्षक के रूप में मैं प्राइमरी स्कूल से पढ़कर पहुँचा और एक सोच थी कि हम भी बेसिक की सूरत बदलें और उसके लिए हमने प्रयास किया और शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास हुआ उसका नतीजा रहा कि हमको इसी वर्ष राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
क्या बात है, पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। और दूसरी बात यह है कि इस पे भी हम जरूर आएंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। आप अपनी पहले प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताएं, कहां से आपकी हुई
प्रारंभिक शिक्षा? उसी ग्राम सभा में अशोक पुटिकिया जहां हमने जन्म लिया, वहीं स्कूल से हमने शुरुआत की और हमारे उस गुरुजन ने जो हमको सबसे पहले, जैसा आप जानते हैं, पट्टी जो तख्ती होती थी उससे हमने पढ़ाई की और साकेत डिग्री कॉलेज तक पहुंचे जहां से हमने एमएससी बीएड किया। तो ये बीच बीच में जो हमारा कारवां रहा शिक्षा का, हाई स्कूल गांधी विंटर कॉलेज नवाबगंज और यर्थ तक हमने पढ़ाई की दयानंद आयुर्वेदिक इंटर कॉलेज वजीरगंज से।
ओके, तो आपने बताया सुनील जी कि आप तीन भाई हैं।
जी सर,
बाकी दो भाइयों के बारे में बताया कि वो क्या कर रहे हैं।
बड़े भाई साहब बहुत ही सजे और सुलझे इंसान हैं, जो हमारे पिता तुल्य हैं। वो इस समय पानीपत में हैं, एक कंप्यूटर इंजीनियर की तरह काम कर रहे हैं और वो कंप्यूटर मास्टर माने जाते हैं अपने आप में।
वाह।
दूसरे भाई जो हमारे हैं गया प्रसाद आनंद जी, जो आर्टिस्ट हैं और कवि भी हैं, कला के क्षेत्र के बेताज बादशाह हैं। उनको कई मंचों पर और हमें खासकर उनके माध्यम से जो कला के क्षेत्र में हमको अपनी उपलब्धि मिली है, बड़े भाई जीपी आनंद का ही नतीजा रहा।
बहुत अच्छी बात है। अपने पिताजी के बारे में बताइए कि वो किसी व्यवसाय में थे या कहीं जॉब करते थे?
पिताजी हमारे किसान और उनको जब हम देखते थे तो एक जुनून आता था कि किसान का जो सपना होता है जैसे उसकी फसल अच्छी हो, ऐसे हमको पाल पोस कर बड़ा किए और उनका एक सपना था कि हमारा बेटा पढ़ लेकर कुछ ऐसा काम करे जिससे हमारे गांव का, हमारे समाज का नाम रोशन हो। तो एक किसान के परिवार में वो पिताजी हमारे खेती किसानी करते थे और उसी गाँव में हमको पढ़ लिख कर एक सरकारी स्कूल से यहाँ पहुँचाए। तो हम कभी कभी भावुक भी हो जाते हैं कि कैसी नसीहत हमको दी, कैसा संस्कार दिया जो आज हम इस मुकाम पर हैं।
क्या बात है। पहले तो अपने श्रोताओं को हम बता दें कि श्रोताओं हमारे साथ में सुनील कुमार आनंद जी जो कि मौजूद हैं आज गेस्ट के रूप में। उनके अगर हम अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे तो शायद आज वो हम पूरी गिनती आपको बता भी नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो हमारे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के स्टूडियो में आए हैं। वो उनसे बातचीत का दौर जारी रहेगा और स्पेशली आपने बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा शिक्षा जगत में बहुत काम किए हैं, बुक्स लिखी हुई हैं, कई सारे अवार्ड्स आपको उसी के बिहाफ पे मिले हैं जिस पे आज हम विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपके जीवन के संघर्षों के बारे में जानना चाहूँगा कि आप उस दौर के बारे में बताइए जब आपके पास शायद संसाधन की कमी थी लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति ने आपको आगे बढ़ाया और आज इस मुकाम पर पहुँचाया।
जी सर, धन्यवाद। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, बशर्ते हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो ये प्रेरणा मिलती थी और कार्ल मार्क्स का एक विचार भी है कि खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए जहान है। तो हम अपने बच्चों को बताते हैं कि आप शुरुआत कीजिए, रास्ते खुद ब खुद निकलते आएंगे। जब हम हाई स्कूल इंटर पास किए तो उसके बाद में कहीं ना कहीं स्थिति ये थी कि पारिवारिक स्थिति, जिम्मेदारी हमारे ऊपर बढ़ती जा रही थी, और फिर हमने सहारा लिया कोचिंग का, कोचिंग पढ़ाते चले, और उसके साथ साथ भाइयों ने हमको बहुत ही मोटिवेट किया, हर जगह पर उन्होंने सहयोग किया, और जो पढ़ाए तो उसका नतीजा रहा सर कि हमारे जो कोर्स थे वो भी रिपीट होते थे, और हमारे बच्चे जो तैयार हो रहे थे उस दौर में जो हमने बच्चों को पढ़ाया, आज हमारे बच्चे PCS तक पहुँचे हैं। तो ये समाज से जुड़ते गए और उसमें दोनों का फायदा होता था, हमारे बच्चों का भी और हमारा भी। तो ये चैलेंज जो हमारा था एक अवसर बन गया सर।
कहते हैं आनंद जी कि शिक्षक जो होता है वो एक सुनार होता है।
जी जी।
तो सोने को जो गढ़ता है वो एक सुनार ही गढ़ सकता है, उसकी कीमत को जान सकता है, और बाद में दुनिया के सामने उसको एक सोने की तरह पेश करता है, जो कि आप बखूबी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और आपका जीवन भी कहीं ना कहीं आपने अभी जस्ट बताया कि मतलब बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं उपलब्ध रहे हमेशा से, सारी चीज़ें आपको करी कराई नहीं मिली, आपने एफर्ट्स डाले जो आज वही बच्चों को भी आप शिक्षा दे रहे हैं। आनंद जी, बचपन में आपका स्वभाव कैसा था, खेल वेल में आपको रुचि रहती थी क्या?
खेल बहुत खेलते थे सर, और अभी आपको बता दें कि उस समय कंचे हुआ करते थे, और हम उस दौर में बहुत माहिर थे और बहुत सारा इकट्ठा भी किए हैं। तो कभी कभी हमारे पिताजी हमको देखते थे कि कंचे खेलते हैं, तो वो एक थैली कंचा लेकर देते थे, मतलब इतना दुलार, इतना प्यार से हम लोग को हमारे भाइयों और हमारे पिताजी ने पाला है। शायद कोई ऐसा होगा जिसको इतना प्यार और दुलार मिलता तो शायद बिगड़ भी सकता था, लेकिन वो संस्कार जो उन्होंने हमको दिया उसको हमने अपने बहुत ही माइंड में सेट करके रखा कि इनकी कुछ उम्मीदें हैं। और कहीं भी रहते थे, बाहर भी रहकर पढ़ाई किए हैं, तो कई साथी ऐसे भी मिलते थे, चलिए यार फिल्म देखा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, लेकिन हम कहते थे हमारे पिताजी हमको भेजते हैं, काफ़ी उम्मीदें लेकर भेजते हैं, उनके चेहरे में देखते थे कि हम क्या बनना चाहते हैं। तो हमको वहाँ पर कई लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति थे कि हम अपने साथियों को अपने जैसा बना दिए, बशर्ते उनके जैसा हम नहीं बने।
क्या
अगर बुरी आदतें थी तो उनको हमने सुधार दिया।
वाह, और आपने एक बात बहुत सही कहा कि जैसे मैंने भी ये सुना है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि पिता बिगाड़ देते हैं, ठीक है, सुविधाएं दे दे के या आपको, लेकिन आपसे मैं यही जानना चाहता हूं कि किस तरह से बैलेंस रहा आपका पिता की परवरिश में, क्योंकि आपने बताया कि कंचे जो अक्सर देखा जाता है कि माता पिता उसके लिए डांटते हैं,
जी,
उसके लिए कहीं ना कहीं पिता आपको खेलने के लिए पूरा आज़ादी देते थे, लेकिन साथ ही साथ वो एक जो संस्कार देना, आपकी लिमिट्स को बताना, आपकी हदें क्या है, बेहतर क्या है, उसका कोई एक एग्जांपल बताइए, अगर कोई ऐसी घटना हुई हो या कुछ अगर आप शेयर करना चाहें।
बहुत छोटे थे और जब खेलने चले जाते थे इधर उधर, तो हमारी माता बड़े शान से कहते थे कि बेटा हमारा चाहे जहाँ भी हो खेल रहा हो, लेकिन एक बार आवाज़ देते हैं तो तुरंत आ जाता है। तो हम ये नहीं, खेलना का मतलब होता है कि हाँ खेलना ज़रूरी है, क्योंकि कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, बच्चों को एकदम किताबी ज्ञान से ना बांधें कि वो अपने जीवन को भूल जाए कि हम बच्चे हैं। तो खेलना ज़रूरी था, लेकिन ये नहीं कि हम खेलने में ही मस्त रहें, पढ़ाई छूट जाए। तो दोनों का सामंजस्य बनाकर चलते थे, और हमारे बड़े भाई साहब जो शिवप्रसाद जी हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा अनुभव रहा कि जब वो पढ़ने बैठते थे तो हम उनके साथ बैठते थे। बहुत छोटे थे तब स्कूल चले गए उनके साथ उंगली पकड़ के, और उसका नतीजा रहा कि हाँ उनका सबका संस्कार और जो अनुभव था हमको बहुत मिलता गया। तो जो आप बता रहे हैं सर, तो दोनों का सामंजस्य बनाकर चलते थे, खेल और पढ़ाई। ये है कि भाई साहब कहते थे अगर 1 घंटा खेल रहे हो तो 4 घंटा पढ़ना भी है, तो ये था सर।
क्या बात है, तो आपने तालमेल बनाया और उसका नतीजा आज बहुत साफ तौर पर पूरी दुनिया देख रही है। सुनील जी, कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं, आप आज जिस तरह से काम कर रहे हैं, जाहिर है कि आपके टाइम पे आपके भी कुछ शिक्षक रहे होंगे, उनकी किसी शिक्षा के बारे में बताइए, और आपकी उस टाइम उनकी नज़र में क्या इमेज थी, कुछ तो कहते होंगे आपको ना?
बहुत अच्छा उनका जो व्यवहार था सर, मतलब एक बार खुद बता रहे हैं, उसी तख्ती पर लिख कर गए और पूछे सर कि इसमें लिखा क्या है, तो बहुत अच्छा राइटिंग हमारी रहती थी, तो हम इसी में खुश थे कि बहुत अच्छी हमारी राइटिंग है। तो सर कुछ पूछे और 2-4 शब्द के बाद हम पढ़ नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब कुछ नहीं रह जाएगा अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उस पर हमने उन्होंने दंडित भी किया। और अब मिलते हैं सर से कहते हैं सर 2-4 डंडे और लगा दिए होते हम कहीं जिले से बाहर निकल गए होते। तो उनका जो संस्कार था कहीं बहुत अच्छा लगा। और अभी जब उनको हम अपने घर पे बुलाए, जो हमको पुरस्कार मिला 35 साल बाद सर हमारे घर आए, जो हमारे गुरुजी पहले क्लास में उनको पढ़ाए थे, तो भावुक हो गए कि नहीं था कि आप इतना आगे जाएंगे। तो गुरुओं का जो संबंध था सर, हम हमेशा उनसे जुड़े रहे और मिलते रहे, क्योंकि आज जो भी है उन्हीं की बदौलत है।
बिल्कुल, खेल के साथ साथ में जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम को आप कितना अहम मानते हैं, और आपने खुद कितना पार्टिसिपेशन किया भाई, बहुत सारे एनुअल फंक्शंस होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, प्रारंभिक शिक्षा के दौरान आपने क्या इस तरह की कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, किया तो किस में किया?
जितने भी कार्यक्रम होते थे हमारे गुरुजी हमें हमेशा उसमें प्रतिभाग कराते थे, और अंताक्षरी होती थी, गीत होते थे और नुक्कड़ नाटक जैसे हुआ करते थे। तो गुरुजी हमको यहाँ से लेकर ब्लॉक तक लेकर गए, और बड़ा अच्छा लगता था जब वहाँ हमको पहली बार एक पेन मिली तो हमें लगा कि जैसे बहुत बड़ा उपहार जो आज पुरस्कार मिला उससे बड़ा लग रहा था, क्योंकि वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन का दिन था कि हम एक गाँव से निकल कर ब्लॉक लेवल पर हमारा नाम बोला गया और वहाँ सम्मानित हुए। तो ये कारवां बढ़ता गया और उसी का नतीजा रहा कि सर हम लिखने में भी आगे बढ़ गए और हम लिखते भी शुरू किए, क्योंकि अक्सर होता था किसी गीत को अगर हम याद कर लिए तो कोई बच्चा उसको पहले गा देता था तो हम फिर उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती थी, तो हमने खुद लिख कर गाना शुरू किया। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट था जो अवसर मिला हमको, हमारे गुरुओं की वजह से मिला, और उसमें हमने प्रयास किया और ब्लॉक जिला लेवल तक हम पहुँचे।
मतलब आपके कहने का मतलब है कि आप खुद से लिखने भी लग गए, कि आपका लिखा हुआ तो कॉपी किया नहीं जा सकता है।
बिल्कुल सर,
पहले से जो बॉलीवुड के गाने हैं या देशभक्ति गीत है उसको तो कोई भी गा सकता है।
अक्सर हो जाता था सर।
बिल्कुल सही बात है। और मुझे एक चीज ये बताइए सुनील जी, मुझे जहाँ तक पता है कि जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए अप्रिसिएशन चाहिए होता है, जैसे आज जो आप बखूबी बच्चों के साथ कर रहे हैं, आपके लिए उस टाइम अप्रिसिएशन की वजह कौन बनता था, किसने इतना ज्यादा इंस्पायर किया? क्योंकि हर मोमेंट पे अगर आपको इंस्पायर किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो जाहिर है कि आप कुछ बहुत बेहतर करने वाले आगे, उसके बारे में बताइए।
बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं अपने जुनून को जिंदा रखने के लिए जो कहते हैं पुरस्कार या सम्मान या बीच बीच में लोगों का मोटिवेशन बहुत मायने रखता है। ऐसे हम क्लास में बैठे थे, हमारे गुरु ने कहा था कि ये जो हमारा रूप है संस्कृत में उसको याद करने के लिए बोला गया कि क्लास में सबसे पहले जो सुनाएगा उसको मेडको पेन उस समय आती थी उसको दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमने सुना दिया और उसका उद्देश्य रहा कि ऐसे ही माहौल बनता गया और जुनून कहते हैं कि आगे बढ़ता गया। और सच है ऐसे ही विद्यालय से लेकर हम अन्य क्षेत्रों में भी आगे निकले तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अवसर होता है, और हम अपने बच्चों को भी इसी तरह से प्रोत्साहित करते हैं कि बेटा आगे बढ़िए। और उनके लिए जो बच्चे डेली आते हैं क्लास में टॉप करते हैं, उनके लिए कॉपी पेन और जीके बुक ये सब हम खुद उनको प्रोत्साहित करते हैं
जी। क्योंकि आज मतलब आपने जो बताया सुनील जी, ये बिल्कुल सही फैक्ट बात है। मुझे भी ये लगता है कि अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी बच्चों को बढ़ाने के लिए। ये तो रही आपकी शिक्षा की बात, ग्रेजुएशन टाइम में आप बाहर गए
जी,
उस दौरान जो आप हॉस्टल में रह के पढ़ रहे थे, जहाँ पे माँ बाप को सबसे ज़्यादा डर होता है कि बच्चा हमारा बिगड़ ना जाए, नया माहौल है, यहाँ हम देखने वाले भी नहीं है, एक डर हमेशा बना रहता है वो कोई भी माँ बाप हो सबके मन में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उस दौरान आपके माँ बाप का आप पे कितना विश्वास था और आपने उस विश्वास को किस तरह बनाए रखा?
बहुत अच्छा सवाल सर, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है अपनी ज़िंदगी का। और कहते हैं कि हमारे सर भी कहा करते थे कि सुनील जी अपने ज़िंदगी का दो चार साल अगर आप थोड़ा कष्ट में गुजार दो तो पूरी ज़िंदगी ऐश करो, और इसी दो चार साल को अगर आप ऐश में गुजारना चाहे तो पूरी ज़िंदगी आपकी कष्टों भरी होगी। तो हम उस बात को एकदम गांठ बांध लिए थे, और कहते हैं कि पिताजी जो बता रहे हैं, एक बार ऐसे हमारा पेपर ख़त्म हुआ सर बीएससी का, और हम लोग बैठे शाम को लौट कर आए तो हमारे साथियों ने बहुत सारा कुछ व्यवस्था किया हुआ था, कहे चलिए यार आज कुछ है तो सबको विश्वास था कि सब तैयार हो जाएंगे लेकिन सुनील नहीं तैयार होंगे। तो उन्होंने कहा हम क्या भाई क्या बात है इतना सेवा हो रही है, कहने यार एक बात है पिक्चर देखने चलना है, हम कि पिक्चर देखने आए हैं हमारे पिताजी इसलिए भेजे हैं, कहने हमको पता था तुम नहीं जाओगे। और सात लोगों की हमारी टीम थी, सातों लोग नहीं गए, कई साथी नाराज भी हुए, लेकिन बात वही आई कि सर हम चाहते थे कि जो उनका सपना सजा कर हमारे यहाँ आए हैं उसको कहीं ना कहीं साकार करें, और वही दिन रात जो यहाँ मेहनत करते थे खेती किसानी की उनको देख कर लगता था कि अभी हम उनको बहुत कुछ करना है। और एक बहुत अच्छा शब्द हमारा है कि कहते हैं कि अगर आप डीएम ना बन सको तो अपने बच्चों को अगर बना ले जाओ तो आप डीएम नहीं आप डीएम के बाप बन सकते हैं।
वाह क्या बात है, और वो करके दिखा रहे हैं आप बखूबी, उसके बारे में भी हम आगे विस्तार से बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है आपकी शेयरिंग से सुनील जी कि आप सेंसिटिव बहुत हैं, आप चीज़ों को बहुत गहराई से देखते और समझते हैं, उसके बाद अपना विचार बनाते हैं। क्योंकि जिस तरह से आपने गुरुओं की बात का गांठ बांध लिया या पिताजी की बात है, एक तरफ आपने पिताजी की सीख को भी लेके साथ चले, उनकी स्ट्रगल को भी देखा
जी,
उनकी आज़ादी का भी आपने पूरा फायदा उठाया, खूब खेले खूब मस्ती की, लेकिन साथ ही साथ एक लिमिट में रहें, जो सपना उन्होंने देखा था उसको पूरा किया। सपने से हमें याद आया, क्या आप जो आज हैं एक शिक्षक के तौर पर, क्या इसमें आपके पिताजी का भी सपना है या ये आपका खुद का ये था डिसीजन कि आप टीचर ही बनेंगे?
उसमें सर हम एक बार पढ़ रहे थे तो डॉक्टर चड्ढा की कहानी मंत्र पढ़ रहे थे, तो बात आई कि हम मेडिकल में जाना चाहते थे, फिर बात आई कि अगर मेडिकल में चले गए तो केवल हम डॉक्टर अपने रह सकते हैं, बाकी हम डॉक्टर तैयार नहीं कर सकते हैं। फिर वहीं से हमारा मन बदला कि नहीं, हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हम डॉक्टर बना सकें, इंजीनियर बना सकें। और पिताजी का सपना था कि हाँ बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बने ज़रूर, लेकिन हम फिर जब उस मंत्र कहानी को पढ़े तो पता चला कि नहीं, अगर हम टीचर बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं इससे हमारे समाज को हर क्षेत्र में लोग निकलेंगे और समाज आगे बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं डिसीजन हम खुद लिए, और हमारे साथी एक दो साथी थे, खुशवंत जी जो हमारे साथ में हैं वो भी टीचर हैं गोंडा में, तो उनका भी एक सपना था। तो ऐसे साथियों का हमारा बहुत अच्छा, जो साथी हमारे थे हम मानते हैं कि उनको विशेष श्रेय देना चाहते हैं, क्योंकि पिताजी किसान थे, उनको बहुत ये पता नहीं था हमको क्या बनना है। लेकिन एक बार जब गांव में रैली निकलती थी पहले प्रभात फेरी, तो पिताजी लड्डू उड्डू बांटते थे, तो गुरु का जब सम्मान करते थे तो हमको लगता था कि बहुत बड़ी चीज़ है, और हम भी सीना चौड़ा करके खड़े होते थे कि गुरु का मतलब कुछ होता है। तो हम भी सोचे कि क्यों ना इस बचपन को जो हम सोच रहे हैं साकार किया जाए।
मैं आपकी बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा हूँ सुनील जी, क्योंकि आपने जैसा बताया कि एक शिक्षक बन के आप ना जाने कितने प्रोफेशन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में ही आप खुद की खुशी देखते हैं, बच्चों के भविष्य में ही खुद का सेटिस्फैक्शन देते हैं। और आज आप कितने ज़्यादा अमीर हैं इस मामले में ये आप समझ सकते हैं बेहतर, शायद उसको थोड़ा बहुत हम लोग भी फील कर सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये रही आपके बारे में बात, अब चूंकि वक्त हो चला हमारे छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का, सो अपने श्रोताओं से हम यही कहेंगे कि सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मिलते हैं इस छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, और सुनील जी से हमारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। अब जो कुछ बातें होने वाली है वो काफी ज्यादा अहम है। स्टे ट्यून रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
नहीं सुनेंगे अब बचपन का ताना, अब तो बस गिफ्ट आईबीएफ है जाना। जी हाँ, निसंतान दंपतियों के घर भी अब गूंजेगी खिलकारी। गोंडा में मंडल का एकमात्र विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित आईबीएफ सेंटर, जो देता है आपके आंगन में खुशियों की सौगात। निःशुल्क परामर्श के लिए आज ही संपर्क करें 1800 120 60 60 60। गिफ्ट आईबीएफ गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा।
ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
जी नमस्कार, मैं प्रोफेसर शिव शरण शुक्ला, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन श्री लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज गोंडा, कन्वीनर एजुकेशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, प्रबंधक अवध पब्लिक स्कूल टैगोर नगर जानकी नगर गोंडा। हम यहाँ के नागरिकों को, अभिभावकों को एक संदेश देना चाहते हैं कि इस जीवन में शिक्षा से बड़ा धन कोई है नहीं। विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। हम अरबों खरबों रुपया रखे हों लेकिन अज्ञानता बस हम उस धन का सदुपयोग भी नहीं कर पाते, वो धन समाप्त हो जाता है। लेकिन विद्या का धन कभी समाप्त नहीं होता है। व्यय कृते वर्धति एव नित्यम, विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। हम इसको जितना ही दें, ज्ञान जितना ही इसका प्रचार प्रसार करें उतना ही ये बढ़ता है। और अभिभावकों से ये अपील है कि आप बच्चों को बहुत संपन्न आर्थिक संपदा से संपन्न करने का प्रयास ना करिए, उनको ज्ञान की संपदा दीजिए। उनको अगर ज्ञान और अनुभव से सुसज्जित कर देंगे तो उनको कभी जीवन में अर्थाभाव लगेगा ही नहीं। शिक्षा ही जीवन है, जीवन ही शिक्षा है, शिक्षा और जीवन दोनों एक ही है। इफ देयर इज नो एजुकेशन देयर इज नो लाइफ। इस तरह से आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए, उनके शिक्षा पर पूरा ध्यान दीजिए, आप अच्छी पेरेंटिंग करिए। और अध्यापक तो हमेशा बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए तत्पर है ही। बच्चों के भविष्य के निर्माण में या तो माता पिता या शिक्षण संस्थान के अध्यापक ये ज़्यादा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उनके व्यक्तित्व विकास में इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और अध्यापक तो समाज का निर्माता है, और समाज का निर्माण अच्छे नागरिकों से ही होता है, खाली भीड़ से नहीं। शिक्षित लोग, अच्छे ज्ञानी लोग, अनुभवी लोग ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करते।
ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
हेलो एवरीवन, आपकी फेवरेट आरजे मोनिका लेकर आती है ज्ञान असली बीट्स, जहां होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें, लाइफस्टाइल एंड ग्रूमिंग, स्पोकन इंग्लिश की बातें, किस्सा गोई और किताबों पर बातें, शेर व शायरी जिसमें कुछ अपनी कहेंगे कुछ आपकी सुनेंगे और जिंदगी के अनसुने सलीके की बातें करेंगे। तो सुनना न भूलिए रोजाना दोपहर 3:30 बजे। सो लर्न ग्रो एंड ग्लो विद आरजे मोनिका।
ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
मत आजमा रे, फिर से बुला रे, अपना बना ले हूँ बेहरार। तुझको ही चाहा, दिल है ये करता, आबे तहाशा तुझसे ही प्यार। हसरतें बार 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 यार की करो, ख्वाहिशें बार 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 यार की करो, चाहते बार 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 यार की करो, मन्नतें बार 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 यार की करो। जार जार रोते हैं, खुद से खफा भी होते हैं, हम ये पहले क्यों ना समझे, तुम फकत मेरे दिल का करार खोते हैं, कहां चैन से भी सोते हैं, हमने दिल में क्यों बिछाए शक ये गहरे। हसरतें बार 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 यार की करो, ख्वाहिशें बार 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 यार करो, चाहते बार 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 यार की करो, मन्नते बार 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 यार की करो। देखना तेरी ही राह ताकना, तेरे ही वास्ते है मेरी हर वफा, तेरी ही बात सोचना, तेरी ही याद ओढ़ना, तेरे ही वास्ते है मेरी हर दुआ। तेरा ही साथ मांगना, तेरी ही बाह थामना, मुझे जाना नहीं कहीं तेरे बिना। तू मुझसे फिर न रूठना, कभी कहीं न छूटना, मेरा कोई नहीं यहाँ तेरे सिवा। हसरतें बार 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 यार की करो, ख्वाहिशें बार 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 यार की करो, चाहते बार 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 यार की करो, मन्नते बार 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 यार की करो।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और हमारी बातचीत का दौर जारी है सुनील कुमार आनंद जी से, जो कि प्रधानाध्यापक हैं कंपोजिट विद्यालय बाबा मठिया ब्लॉक वजीरगंज जिला गोंडा। आपने अपनी जिंदगी के बारे में बताया और अपने सिद्धांतों के बारे में, मैं तो काफी ज्यादा मुतासिर आपसे हुआ।
धन्यवाद सर।
और मुझे उम्मीद है कि हमारे कई सारे श्रोतागढ़ जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं वो बहुत ज्यादा आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। सुनील जी, अब आप चलते हैं आपके काम के ऊपर। आपने अपनी लाइफ की जर्नी को बताया और कहीं ना कहीं जो एक जर्नी रही आपकी वो सच में प्रेरणा का स्रोत है बाकी बच्चों के लिए जो इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं या जिनके पास संसाधन के अभाव हैं उनके लिए। तो अब अपने ज़रा प्रोफेशन पे आइए और आप बताइए, क्योंकि आपका अक्सर फेसबुक पे लोगों का मानना है कि आए दिन आप फोटोज़ में छाए रहते हैं जिसमें बच्चों को आप कभी टूर करा रहे होते हैं, कभी बच्चों को एक्सपोजर दे रहे होते हैं, अवार्ड्स तो काफ़ी ज़्यादा लेते रहते हैं और शायद ही कोई ऐसा अवार्ड बचा होगा जो बाकी के लिए आपने छोड़ा होगा, सब तो आपने ले लिया।
नहीं,
मतलब जस्ट ये मजाक कर रहा हूँ। हालांकि काफ़ी सारे आपको अवार्ड्स मिले हैं और बेहद बेहतरीन आपका काम है, ये हम सभी लोगों को पता है। तो अब सबसे पहले आपका जानना चाहूँगा कि बच्चों को लेके पढ़ाने के दौरान आपका क्या अप्रोच रहता है, क्या नज़रिया रहता है?
बच्चे हमारे सर बहुत मिलकर पढ़ते हैं हमारे साथ में, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य रहता है कि हर बच्चे को अगर अपना बच्चा मान लिया जाए तो वो बच्चे आपसे दूर नहीं हो सकते हैं। इसीलिए अभी सीतापुर टूर जाना था और DM साहब और यहाँ की जो DC मैम थी, कई विद्यालयों में बात की तो कभी लोग भेजना नहीं चाहते थे गार्जियन, हम लोग देखे उसमें, लेकिन हमारे यहाँ से हम देखे तो सभी बच्चे तैयार थे। मैडम ने कहा कि बच्चों को इस तरह से आपने क्या कर दिया कि सब बच्चे तैयार हैं, हम कि ये हम नहीं बच्चों से पूछिए। तो कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि हाँ हम उनके गार्जियन हैं, एक शिक्षक ही नहीं उनके माता पिता भी हम बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। और रही बात कहीं भी बच्चे अभी हमारे यहाँ जाएंगे, एक हमने लाइब्रेरी भी बनाई है वहाँ पर, बच्चों के लिए स्टेशनरी की व्यवस्था की है, कोई बच्चा आया है एडमिशन होता है तो उसमें एक कापी पेन हम अपनी तरफ से देते हैं, किसी को कुछ है नहीं तुरंत जाके वहाँ उठा लेता है। तो ये व्यवस्था किए हैं कि उनको कहीं से ना दिक्कत हो, जैसे हम अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं ऐसे हम विद्यालय के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। और जब बच्चे हमारे सेलेक्ट होते हैं सर, जैसे भी राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति में हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए, उस दिन हमको वो खुशी मिली शायद जो हमको राज पुरस्कार पाकर ना मिली हो, क्योंकि उस दिन हम खाना नहीं खाए अपने घर पे, हम बहुत खुश थे
हमारे खुशी।
हाँ, हमारे बच्चे जब सफल होते हैं, ऐसे जिले पर कार्यक्रम हुआ था, 5 मेडल हमारे बच्चों को मिले GK में, क्विज में और पोस्टर प्रतियोगिता में, इस तरह से जब निबंध भाषण में, तो हम देखे तो गांव के बच्चे जो हमारे आए थे उनके गार्जियन भी आए थे, हमने कहा चलो आपको कुछ नाश्ता वास्ता करा दें, तो वही जवाब उनका था कि सर आज भूख नहीं लग रही है, आज हम बहुत खुश हैं, हमारे बहन को वहाँ DM साहब सम्मानित कर रहे थे। तो ये जो आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं जब बच्चों को अच्छा लगता है तो हमें लगता है कि आज सबसे बड़ा सम्मान हमारा यही हो रहा है।
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप एक आनंद की जो एक लेवल होता है उसको पार कर गए हैं और एक आप परम आनंद में चलते हैं। कह सकते हैं कि मतलब जो माँ बाप की खुशी होती है उनके आँखों में जो खुशी के आंसू होते हैं, जो एक स्माइल होती है, वही आपका सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एनर्जी का ड्रिंक होता है आपके लिए। सुनील जी, आप ये बताइए कि आपके कॉलेज में यानी आपके स्कूल में कौन कौन सी फैसिलिटी आप फिलहाल बच्चों को दे रहे हैं?
सबसे पहले तो बता दें सर, हमारा एक सपना था कि बेसिक में विद्यालय हो और उसमें सारी सुविधाएं हो, किसी कॉन्वेंट में वो व्यवस्था ना हो, इतना हम कर जाएं। तो उसके लिए हमने प्रयास किया, सबसे पहले जब विद्यालय पहुंचे वहां पर एक व्यवस्था की गई कि साउंड सिस्टम हो, माइक से प्रार्थना हो बढ़िया से, ये व्यवस्था हमने खुद के प्रयास से की, कंप्यूटर सिस्टम लगाए, और उसके बाद में हमको स्टेट ICT अवार्ड 2016 में मिला। फिर हमने वहाँ पर एक
हमारे श्रोताओं को बता दिए कि ICT पुरस्कार किस एवज में दिया जाता है, ICT क्या था आपने?
ICT में सर जैसे बच्चों को पढ़ाते समय कोई चीज़, जैसे डायनासोर के बारे में बता रहा हूँ आपको, तो डायनासोर तुम दिखा नहीं सकते हैं, अगर उसका एक छोटा सा क्लिप हम बच्चों को दिखा दे तो उनके दिमाग में वो बन जाता है कि नहीं डायनासोर इतने विशाल काय रहे होंगे, इस काल में आए होंगे। तो ऐसे कुछ पौधे हैं जैसे हमारे पास देखें कीट बच्ची पौधे हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में है, तो इस सब वीडियो क्लिप को अगर हम दिखा देते हैं तो बच्चों को बहुत चीज़ वो बैठ जाती है क्योंकि देखकर सुनकर ज़्यादा समझने में। तो इसमें ICT में हमने काम किया और इस तरह से हमारे 4 वीडियोज दीक्षा इस पर भी सिलेक्ट हुए जो स्टेट लेवल पर सिलेक्ट हुए सर।
क्या बात है, आपके वीडियोज यानी आप जो हमारे श्रोताओं को बताना चाह रहे हैं कि ये आप एक डिजिटल तरीका बता रहे हैं पढ़ाने का जिसके एवज में ये पुरस्कार दिया जाता है आपको, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन हो भी रहा है काफ़ी तेज़ी से और इसकी तरफ हमको जाना भी चाहिए। सुनील जी, आपने बताया कि आपका ये स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं मानना रहा है, सपना रहा है कि बच्चों को कॉन्वेंट जैसी सुविधा दी जाए, कॉन्वेंट में देखा जाता है तो उनके यहाँ स्मार्ट क्लासेस होती हैं, कॉन्वेंट में देखा जाता है तो उनके यहाँ ड्रिंकिंग वाटर अच्छा होता है, साफ होता है, टॉयलेट प्रॉपर होता है, बच्चों की सिटिंग के लिए चेयर्स होती हैं प्रॉपर, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, ये बेसिक्स है। तो क्या ये बेसिक्स फैसिलिटीज़ आपके यहाँ भी है?
जी सर, हमारा विद्यालय है जहाँ पर स्मार्ट क्लास हैं और बच्चों में बैठने के लिए बेंच, पंखे, सोलर पैनल, इन्वर्टर, ये सारी सुविधाएं हैं कि बच्चों को कहीं से कोई समस्या ना हो। और सबसे अच्छा लगता है कि आज बगल में जो हमारे कॉन्वेंट विद्यालय चल रहा था, देखे थे, वो विद्यालय बंद हो गया और हमारा विद्यालय रन करने लगा। तो ये जो व्यवस्था दी गई, हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी है, उसके साथ साथ बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा विज्ञान क्लब है। विज्ञान क्लब में हमने सारे स्पार्ट रखे हैं और उसमें माइक्रोस्कोप वगैरह बच्चों को प्रैक्टिकल करने का अवसर, और इसका परिणाम रहा कि हमारे बच्चे राष्ट्रीय विज्ञान आविष्कार अभियान, इंस्पायर अवार्ड सब में जिले और प्रदेश स्तर तक चयनित हुए।
मतलब ये जो आपने अभी एक एग्जांपल दिया कि कॉन्वेंट बंद हो गया और आपका स्कूल चल रहा है, जबकि एग्जांपल लोग देते हैं कि जहां सरकारी स्कूल होते हैं उसके आसपास के कॉन्वेंट बहुत फलते फूलते हैं।
तो ये हमने सर चैलेंज लिया और चैलेंज स्वीकार किया, और कहा भी गया है कि इंसान वो नहीं जो हवा के रुख से बदले, इंसान वो है जो हवा के रुख को बदले।
क्या बात है, मतलब ये सारी तो चीज़ें आपको बड़ा इंस्पायर करती है, ऐसी लाइन्स भी आप बीच बीच में बोलते जा रहे, कोट कर रहे हैं, जो हमारे श्रोता और हमको बहुत अच्छी लग रही है, बहुत इंस्पायर कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। आपने बुक बैंक के बारे में बताया।
जी सर,
एक तो आप ये हमको बताइए, क्योंकि आप एक शिक्षक है, तो बच्चों की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बुक कितना इम्पैक्ट करती है उन पर, और आपके बुक बैंक में आपने किस तरह से बुक्स को व्यवस्थित की, किस किस कैटेगरीज की बुक्स है आपके पास में?
बच्चों को अक्सर देखे हैं, जैसे हमारे पास मीना मंच की बुक हैं और कॉमिक्स भी आती हैं, उसके साथ साथ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं। तो बच्चों में जब ये देखा जाता है कि जो किताब में हम पढ़ रहे हैं यही बाद में सामान्य ज्ञान, मतलब ये कंपटीशन में आएगा क्वेश्चन, तो उनके दिमाग में एक बात बैठती है कि इस तरह से अगर हम क्लास में इस चीज़ को सही से पढ़ते चले गए तो भविष्य में हमारा कंपटीशन भी अच्छा होगा। तो ये कहीं ना कहीं जोड़ने का बहुत अच्छा माध्यम रहता है। बुक बैंक हम इस तरह भी बनाए हैं कि जो बच्चा 9th पास कर रहा है, अगर अपनी बुक लाकर हमको जमा कर रहा है तो उसको हम 10th की बुक प्रोवाइड कर देते हैं। उसके साथ साथ हमने समुदाय का भी सहयोग लिया, हर साल हम जो बच्चे हमारे टॉप आते थे उनको हम एक लड़का और लड़की को अपनी तरफ से 9th की बुक भेंट करते थे। फिर इस बात को हमने अपने ग्राम प्रधान से शेयर किया, उन्होंने कहा सुनील जी अकेले अकेले आप समाज काम कर रहे हो यार, हमको भी जोड़ो। तो दो बच्चों का उनको भी सहयोग मिला। फिर हमारे बच्चे जो सेलेक्ट हुए थे इस समय सर्विस में हैं, उन बच्चों ने कहा सर आप हमको पढ़ाए लिखाए हैं, हमारा भी योगदान लीजिए। तो इस तरह से धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और इस साल हम 35 बच्चों को बुक भेंट किए हैं।
क्या बात है, और वो आज चूंकि कहा भी ऐसा जाता है कि जब आप अकेले चलते हैं तो कारवां बनता जाता है, और कहीं ना कहीं वो बात बिल्कुल सच साबित हो रही है कि पहले आपसे इंस्पायर हुए प्रधान जी, उसके बाद वो बच्चे जो आज खुद एक मुकाम पे हासिल कर चुके हैं, आपके पढ़ाए हुए बच्चे हैं, अब वो आपके लिए कहते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं सहयोग करना चाहते हैं।
बिल्कुल सर, बिल्कुल।
आपके इंटरवेंशंस में ये बहुत अच्छी बात है। बुक बैंक की आपने बात की, आपने एक अभी जब आप स्टूडियो आए थे तो आपसे बातचीत के दौरान आपने एक नाम लिया था आनंद की पाठशाला, उसके बारे में बताएं कि वो क्या है।
आनंद की पाठशाला सर, ये हमारा पूरा निःशुल्क क्लास चलती है, और हमने जब देखा कि छुट्टियां हो जाती हैं या कोविड हो गया था, उस दौर बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, तो हम गांव के बच्चों को रख के और उनको पढ़ाना शुरू किए, और हमारा ये जुनून है, जब से हम सर्विस में आए हैं बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं सर। तो छुट्टी के दौरान एक दो महीने जो छुट्टियां रहती हैं उसमें बच्चों को हम कला क्राफ्ट, पेंटिंग, उसके साथ साथ कंपटीशन की तैयारी, और जो बच्चे हमारे किस क्लास में हैं उनके लगभग 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर देते हैं, और जब बच्चे क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर उनका अलग नज़रिया रहता है। और इसका प्रयास जब हम किए तो उसका सार्थक नतीजा ये रहा कि गोंडा का टॉपर हमारे गांव का लड़का मोहित सिंह गोंडा टॉपर निकला, और गांव में भय सरा रहा था। हमने देखा जब रिजल्ट आया, काफ़ी कोचिंग वाले कहे सर हमारा नाम ले लो, हमारा कोचिंग बढ़ जाएगा। कह यार हमको सुनील सर पढ़ाए हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं था, हम कैसे जो है किसी का नाम ले लें। तो आज वो DU यूनिवर्सिटी में टॉप किया है सर।
क्या बात है,
तो बहुत अच्छा लगता है कि ये गांव से निकलकर, और ये आनंद की पाठशाला जारी है, और इस छुट्टी में भी हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं सर।
सुनील जी, आप जो बता रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ पढ़ाने से ही बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, मुझे लगता है कि जिस तरह से आपकी फोटोज सुनने में आती, लोग बताते हैं कि फेसबुक पे आप बच्चों को टूर वगैरह कराते हैं,
जी जी,
उसका क्या उद्देश्य है? क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत अहम रोल अदा करता है बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में, चहुमुखी विकास में।
बिल्कुल सर, पर्यावरणीय ज्ञान जब हम बच्चों को जोड़ते हैं तो बच्चे हमारे उससे जुड़ते हैं, और किताबों में हम बहुत चीज़ें बताते हैं उसको समझ में नहीं आता। बच्चों को इसे पौधों के बारे में बताना हुआ, अगर हम ले गए वहाँ पर्यावरण से जोड़ दिए तो बच्चों को बहुत अच्छा वो बात बैठ जाती है। इस तरह से हमारे बच्चे अभी इस समय स्कूल बंद चल रहा है, अभी आपको फोटो दिखाएं, हमारे बच्चे जाकर स्कूल खोल करके उस पौधों को पानी देते हैं जो बच्चे, जबकि कोई मतलब नहीं रहता स्कूल बंद करने के बाद। तो ये कहीं ना कहीं हमको बताया कि नहीं, एक वृक्ष सौपुत्र के बराबर होते हैं और वृक्षारोपण कार्य महान, एक वृक्ष सौपुत्र समान, ये हमारा नारा है। तो उससे बच्चों को लगा कि नहीं, पेड़ पौधों का भी अपना महत्व होता है और हमको अगर ये नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। तो इस तरह से हम उनको जोड़ते हैं सर, कोरिलेट करने के बाद फ़ायदा मिलता है कि बच्चे खुद उसके प्रति जिम्मेदारी बढ़ रहे हैं। और जब हम घुमाते हैं बच्चों को तो कहते हैं कि अधोघुमक्कड़ की जिज्ञासा, तो घूमना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उससे बच्चों की बात, जैसे गाड़ी नहीं देखे थे हमारे बच्चे, वहाँ देखे, ट्रेन देख कर आए, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको देखने को मिलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं टूर हमारा हर साल जाता है सर।
और बिल्कुल सही बात है सुनील जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को सरकारी स्कूल के, स्पेशली बच्चों को प्राइमरी के, लगता है कि हमारे शायद लिए तो ये टूर्स वगैरह और ये जाके एक्सप्लोर करना, ये आपने विज्ञान क्लब बताया, ये सब नहीं है। लेकिन जिस तरह आपके एफर्ट्स काउंट किए जाते हैं, जिस तरह आप करते हैं, बच्चों को टूर्स कराते हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान दिलाते हैं, उसे बच्चों में एक वो भावना जो होती है कॉन्वेंट के बच्चों वाली, वो ख़त्म हो जाती है। और ये बहुत बड़ी बात है, ये जो आपका टूर्स कराना है, बच्चों को विज्ञान क्लब ले जाना है, या आप पर्सनालिटीज़ को बुला के अपने कॉलेजेस में भी लोगों के भाषण कराते हैं, उनसे मिलवाते हैं, उनकी वर्कशॉप कराते हैं, उसके बारे में भी ज़रा बताइए।
बिल्कुल सर, जो बच्चे हमारे जैसा बनना चाहते हैं, जैसे भी जो बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं पीसीएस, उनको भी बुलाते हैं कि देखिए हमारे पढ़ाई बच्चे निकल गए हैं, वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। जो बच्चे उस क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसको अपना गाइड करते हैं। ऐसे ही आर्मी के काफ़ी बच्चे हमारे सेलेक्ट हैं, वो भी आते हैं, और पुलिस विभाग के काफ़ी अफसर हमारे यहाँ, एडिशनल एसपी साहब जा चुके हैं, और यहाँ श्रम विभाग से भी लोग जा चुके हैं। सरकार की योजनाओं को लेकर भी हमारे गांव में काफ़ी काम चल रहा है कि वहाँ पहुँचने के बाद लोग जुड़ते हैं। तो इस तरह से जब हम उनको बच्चों से जोड़ देते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि इस क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि शिक्षक ही बने, हर बच्चा अपना अपना रास्ता खुद तय करता है। तो इस तरह से जब हम कई लोगों, विशेषज्ञों से उनसे रूबरू कराते हैं तो उनको बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है, और कहीं ना कहीं उनको ये उनके द्वारा जो गाइड मिलता है बहुत काम कर रहता है।
कहीं ना कहीं मतलब ये आप एग्जांपल, एक माइलस्टोन सेट कर देते हैं कि देखिए इसी कॉलेज का यही बच्चा आज पढ़ के इस पोजीशन पे है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, तो बच्चों में वो भावना आ जाती है।
बिल्कुल, और उस दौर में वो निकला है जब उसको बहुत गाइड करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। और आज आपके सामने तो आपका भाई मतलब वो खड़ा हुआ है और गुरु के रूप में हम खड़े हैं, दो लोग लगे हुए हैं, आपके माता पिता साथ में हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते।
वाह क्या बात है, ये तो ही पढ़ाई लिखाई की बात, जॉब में जाने की बात। जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, या सिंगर बनना चाहते हैं, या डांसिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनको लेके आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में आपकी तरफ से क्या अप्रोच होता है?
विशेष प्रशिक्षण, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे अवधि गायक हैं शिवभजन शुक्ला जी, उनका प्रशिक्षण हमने लगवाया, तो बच्चों के जो गीत के माध्यम से आगे निकलते हैं उनको जोड़ा गया। ऐसे कला के माध्यम से हमारे भाई साहब हैं जीपी आर्ट, जो बहुत ही बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, बच्चों को पेंटिंग बनाना सिखा देते हैं। तो बच्चे हमारे जब जिले में कोई प्रतियोगिता होती है, अभी स्वच्छता पोस्टर प्रतियोगिता होती है, वो पोस्टर में हमारे बच्चे जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित हुए, तो कहीं ना कहीं जो हम उसका फ़ायदा बच्चों को देते हैं, उसका फ़ायदा फिर हमको भी मिलता है कि हमारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो हमारा भी सेना चौड़ा होता है। तो जैसे जैसे जो बच्चों के अंदर रुचि देखते हैं उसी हिसाब से विशेषज्ञ को बुलाकर उनसे जोड़ देते हैं।
क्या बात है, मतलब आप तो, एक तो ये है कि आप किसी भी तरह के बच्चों के लिए कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं हैं। अगर बच्चा पढ़ाई लिखाई करके पुलिस में जाना चाहता है तो उसके रिगार्डिंग भी आप दिखाते हैं, मिलाते हैं ऐसी पर्सनालिटी से। अगर वो कला के क्षेत्र में जाना चाहता है तो अपने आप आर्टिस्ट को इनवाइट करते हैं, मतलब हर क्षेत्र के लोगों को इसीलिए इनवाइट करते हैं कि बच्चे में जो स्ट्रेंथ होगी, जो उसकी रुचि होगी,
उस हिसाब से
वो उसको कर लेगा। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही उम्दा टॉक शो इस वक्त आपसे चल रहा है, और हमारे श्रोताओं को सच कह रहा हूँ आज बहुत मज़ा आ रहा होगा ये टॉक सुन के, क्योंकि आप प्रैक्टिकल उन चीज़ों को कर रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, और वो चीज़ धरातल पे वो चीज़ हो रही है, और उसका आप कहीं ना कहीं प्रमाण भी देते चल रहे हैं, उसका लॉजिक भी आप बताते चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसी बीच में हमारे शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का एक वक्त हो चला है। अपने श्रोताओं से हम कहेंगे कि हमारी बातचीत का दौर जारी रहेगा सुनील कुमार आनंद जी से, मिलते हैं इस छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
गोंडा शहर की धड़कन। आप भी चाहते हैं शाम की कॉफी के साथ अपने पसंदीदा सॉन्ग को सुनना, तो अब शाम की कॉफी होने वाली है और भी खास, क्योंकि आज जिमी और डोडो लेकर आते हैं आपके फरमाइशी सॉन्ग्स, इंटरेस्टिंग गेम, इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज और बहुत सारे फन। तो जुड़िए हमारे शाम के वक्त प्रोग्राम गुंडा मैसेज मसाला में 6 बजे से 8 बजे तक आज जिमी और डोडो के साथ, ओनली ऑन ज्ञानसली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
मैं पढ़कर अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ, मैं भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ।
सारे सपने होते हैं साकार क्वालिटी एजुकेशन के साथ सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज, जहाँ एजुकेशन के साथ स्टूडेंट्स के कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम किया जाता है, जहाँ है वेल इक्विप्ड लैब्स, प्रॉपर लाइब्रेरी और ग्रीन कैंपस। साथ ही साथ आपको मिलता है वोकेशनल कोर्सेज में योगा, कंप्यूटर, म्यूजिक, ब्यूटिशियन, स्टिचिंग, टेलरिंग और रेडियो जॉकी, जो आपके बच्चे को देता है एक नई उड़ान। साथ ही साथ NSS, स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज की रेगुलर क्लासेस। गोंडा जनपद का पहला गर्ल्स कॉलेज सरस्वती देवी नारी ज्ञान स्थली पीजी कॉलेज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9450 75 74 83, 9450 75 74 83।
ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
सरे शाम घर से चलते वक्त वो खौफ है कि सरे शाम घर से चलते वक्त गली का दूर तलक जायजा जरूरी है, भटकते रहने कभी सिलसिला जरूरी है, नजर के सामने इकरार हवालों से तल्लुकात के नामों पर हवालों से तमाम उम्र का एक राबता जरूरी है, भटकते हैं कभी सिलसिला जरूरी है, नजर के सामने एक रास्ता जरूरी है।
ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
वेलकम अगेन इन योर शो जिसका नाम है गोधरी, नाउ यू लिसनिंग ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने स्टूडियो में। और आज हमारी बातचीत का दौर जारी है सुनील कुमार आनंद जी से। सो सुनील कुमार आनंद जी, जैसा कि आपके नाम में ही आनंद है, मुझे आपसे बात करके बहुत आनंद आ रहा है।
धन्यवाद सर।
और अब चूंकि बहुत अहम कुछ सवाल हम पूछने वाले हैं, क्योंकि एक सिस्टम की बात होती है जब शिक्षा की बात आती है और कम्युनिटी की बात आती है, तो वहाँ दो पहलू होते हैं। एक तो होता है शिक्षा, स्कूल का एक बॉडी होती है, एक कम्युनिटी होती है।
yes,
और अक्सर देखा जाता है कि उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप या एक दूसरे के प्रति अलग अलग भावनाएं होती हैं, यानी सिर्फ बिलीव्स होते हैं कि वो ऐसा नहीं करते, वो ऐसा, ब्लेम्स चलता है एक दूसरे के बीच में। तो आप खुद एक कम्युनिटी के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कम्युनिटी से इतना अच्छा आपका सामंजस्य है, इतना लोगों का भरोसा आप पे हो गया है, उसके बारे में आप बताएं कि जहां जिन कॉलेजेस में, जिन स्कूल्स में शिक्षकों को इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो वो कम्युनिटी से अपने रिलेशंस किस तरह बेहतर करें।
जी सर, धन्यवाद, बहुत ही अच्छा सवाल है सर। वास्तव में हम जिस समाज में पढ़ा रहे हैं वो हमारा गाँव है, और गाँव के लोग कहीं ना कहीं अपने काम में व्यस्त रहते हैं, और उसका नतीजा निकलता है कि उनके बच्चे कहीं ना कहीं उसी काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं और स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हमारा उद्देश्य रहता है, हम सीधे सीधे अपने पेश करते हैं कि हमारे पिता भी किसान थे, अगर हमको स्कूल ना भेजे होते तो आज हम यहाँ होते
ना?
तो ये जवाब आता है नहीं सर। तो हम कहे, अगर आप खुद चाह रहे हो कि हमारा बच्चा कुछ बने, तो उसको पहली बात तो विद्यालय भेजा जाए। फिर हम गांव में जब SMC मीटिंग उनसे जोड़ते हैं, विद्यालय में SMC मीटिंग की जाती है, गाँव के लोग आते हैं और अपने बच्चों को जब वो देखते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, पूरे 75 जिलों के नाम बता रहा है, इस तरह से उसको तमाम सामान्य ज्ञान याद है, और उसके साथ साथ जो बच्चे हमारे यहाँ जिला अधिकारी द्वारा और राज्य स्तर पर सम्मानित हैं, उनकी फोटोज उनके जब दिखाते हैं, तो उनको बड़ा मन गदगद होता है कि ये हमारे बच्चे जिनको हम लोग एकदम कुछ नहीं समझते हैं, आज इतने बड़े पैदान पर हैं, कभी भी पेपर कटिंग भी दिखाते हैं उनको, तो और अच्छा लगता है कि हम लोग कभी सोचे नहीं थे हमारा बच्चा पेपर में नाम आएगा। तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास जगा। और उसके साथ जो बच्चे हमारे रेगुलर आते हैं उनको हम लोग मंथ में स्टार ऑफ द मंथ अवार्ड देते हैं, और जिनके बच्चे पूरे साल आए होते हैं उनके बच्चों को स्टार ऑफ द ईयर, और उनके माता पिता को भी हम सम्मानित कराते हैं BSC महोदय द्वारा। हमारे जिले के जितने भी अधिकारी हैं DBSC BSC सब लोग वार्षिकों से पहुँचते हैं, और ऐसे अभिभावक का भी सम्मान करते हैं जो अपने बच्चों को इतना मेहनत करके सहयोग कर रहे हैं। उनसे जोड़ने का बहुत अच्छा माध्यम है कि उनसे जुड़े रहें। कोई बच्चा नहीं आ रहा है तो हमारी गाड़ी घूम जाती है कि कारण हो सकता है कोई तबीयत खराब हो। अभी एक दिन गए, एक दिवाकर लड़का था, उसको भी फीवर बहुत ज़्यादा था, हमने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया, वो दवा किए, उसके बाद हमने पैसा दिया, तो गांव के लोग कहते सर हम दे रहे हैं, तो हम के बच्चा हमारा है हम दे रहे हैं, दोनों में काफ़ी बात हुई। तो ये लोगों को लगता है कि नहीं सर इतना ध्यान देते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें। और गाँव में जब निकलते हैं तो कहीं ना कहीं लोग आपको विश्वास जगता है कि देखिए एक सच में कुछ करना चाहते हैं। और उसका नतीजा रहा कि हमारे यहाँ नामांकन बहुत अच्छा रहा। अभी रिजल्ट आया था पूरे ब्लॉक में संख्या तो 300 से अधिक संख्या हमारे विद्यालय में लिस्ट में दिख रही थी, तो बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि आज का जो दौर है, आप काम तो करना ही करना है, एक होता है ज़िंदगी जीना, एक होता है ज़िंदगी ढोना, दोनों बड़ा अंतर होता है सर। तो जब जीना है तो मस्त होके जियो, आनंद होके जियो, यही हमारा अपना अंदाज है सर।
क्या बात है। और आपने कितना प्रैक्टिकली बताया किस तरह से आप एक एक के घर में जाते हैं कि खबर लेते हैं कि आखिर बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, माँ बाप को कन्विंस करते हैं, अपना खुद का एग्जाम्पल देते हैं कि आप खुद भी कितने बिजी हों, लेकिन अगर बच्चों को चाहते हैं आगे कुछ बेहतर करें आपसे तो कॉलेज के लिए आप प्रेरित करते हैं। और एक जो आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को अवार्ड देते हैं, हर मंथ भी आप देते हैं और एक साल में देते हैं और साथ ही साथ माता पिता को देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एसएमसी में किस तरह मीटिंग्स में चीज़ें निकल के आती हैं, अपने श्रोताओं को हमारे बताइए कि एसएमसी मीटिंग्स होती क्या है, ये भी बताते हुए।
एसएमसी मीटिंग अभिभावकों की हमारे होती है, जिसमें हमारे अभिभावक हर महीने आते हैं और उनके साथ में हम अपने बच्चों के अनुभव, विकास विद्यालय में कैसे और बेहतर किया जा सके, क्या सुविधाएं बेहतर की जा सकें। जैसे इस अभी हमारे दो क्लास में बेंच नहीं थी, तो हम मीटिंग में बात किए तो दो क्लास में बेंच, मतलब पूरे क्लास में बेंच हो गई। अगले साल हम लोग प्रयास कर रहे थे कि एक कमरा हमारा ऐसा हो जो बाल वाटिका, जो बच्चे क्लास फर्स्ट में आ रहे हैं या फर्स्ट से पहले आ रहे हैं, उनके लिए कैसा हो। तो उसके लिए अभी मैं एक कमरा बहुत अच्छा डेकोरेट कराए हैं। तो जैसे जैसे उनका फीडबैक मिलता है, तो हम कहते हैं कि बच्चे जब वहाँ से आए तो उनको लगे कि हमारा घर तो बहुत पीछे है, इससे अच्छा तो यहाँ है। उसके लिए उनको स्मार्ट क्लास, बैठने की व्यवस्था और खेल खेल के माध्यम से, हमारे यहाँ खेल के भी बहुत सामान हैं, तो बच्चों को खिलाते भी हम लोग बैठ जाते हैं ऐसे पलथी लगा के वहाँ साथ में, तो बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, तो बच्चों को लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा है, हमारा घर से भी अच्छा है। तो ये करने में हम सफल रहे और उसका नतीजा रहा कि अभिभावकों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने पर विश्वास जताया कि सर हमारे कुछ करने के लिए आए हुए हैं।
सुनील जी, ये बात तो हुई एसएमसी में कि आप रोड मैप बनाते हैं, माँ बाप से उनके बच्चों के बारे में पर्सनली बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपने फैसिलिटी में बताया था कि आपके यहाँ सोलर पैनल्स भी हैं, आपके यहाँ स्मार्ट क्लासेस भी हैं और आपके यहाँ बेंचेस भी हैं। बाकी स्कूल्स की अगर बात की जाए तो ये सारी सुविधाएँ नहीं होती है, तो क्या आपने कुछ चीज़ों को अपनी तरफ से इनिशिएट किया था, बाकी चीज़ें आपको अलग से लोगों ने हेल्प किया, या आपका ये कैसे यहाँ तक, अब तक की जो फैसिलिटी है ये यहाँ तक कैसे पहुँची, इसके बारे में ज़रा बताएं।
कहते हैं सर, जब कोई काम आप करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से रास्ते बनते जाते हैं। इसके लिए हमने जब खुद प्रयास किया, हमको जब अवार्ड मिलते हैं तो कहते हैं अवार्ड बहुत आसान कहना शब्द लगता है, लेकिन अवार्ड आपकी जिम्मेदारी बढ़ाते हैं कि और बेहतर करिए आप। तो हमको जब स्टेट ICT मिला तो हमने कहा भी लैपटॉप तक हम सीमित रह गए हैं, और उसी समय प्रोजेक्टर लगवाए। प्रोजेक्टर लगाने के बाद में चर्चा हुई, एक विद्यालय में प्रोजेक्टर लगा हुआ है। फिर एक बार वैसे हिसाब से लिस्ट मांगी कि कितने बच्चे, कितने विद्यालय हैं ऐसे जहाँ स्मार्ट क्लास चल रही है, तो उसमें हमारे विद्यालय का भी नाम गया। और वहाँ से तीन बार जिले से, प्रदेश से और यहाँ तक दिल्ली तक की टीम आई, और सब हमारे काफ़ी वहाँ भी इंटरव्यू हुआ कि कैसे आप काम करते हैं, ये तो नहीं हम लगवा दें तो आप केवल यूट्यूब पर वीडियो दिखाओ। तो वो लोग काफ़ी हमारा इंट्रोडक्शन किए और उसके बाद इंटरव्यू के बाद उन्होंने सेलेक्ट किया कि नहीं, आपके यहाँ लगभग लाखों के सामान ऐसे हैं जो सुरक्षित रखे हुए हैं और आप इसके बारे में जानते भी हैं। फिर हमको सर स्मार्ट बोर्ड मिल गया, आज का लेटेस्ट व्यवस्था, तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि देखिए हमने प्रयास किया और आज हमारे समुदाय का भी सहयोग मिला। तो स्मार्ट बोर्ड यूनिसेफ और नई पहल की वजह से वहाँ मिला, और उसके बाद में बिरला आदित्य के ग्रुप के द्वारा वहाँ सर जो है हमारे यहाँ सोलर पैनल की व्यवस्था भी की गई।
क्या बात है। तो ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि बेहतर कुछ करते हैं तो बाद में लोग उसमें जुड़ते जाते हैं, क्योंकि वो इजी होता है लोगों के लिए। जैसा कि एक एग्जांपल आपने दिया कि आप पहले पेरेंट्स से मिलना आपने स्टार्ट किया, उनको विश्वास में लिया। आज का ये दिन है कि पेरेंट्स आपसे आके खुद बोलते हैं, बच्चों के लिए कहते नहीं आप नहीं हम खर्च करेंगे, जैसा कि आपने एक एग्जांपल दिया था, वो सुन के बहुत अच्छा मुझे लगा। मतलब इस तरह से एक रिलेशन को मेंटेन करना, मुझे लगता है कि ये आपके अंदर जब पैशन होगा तभी आप कर पाएंगे। और बड़ी अच्छी आपके ये जो जीना है ना, कि अगर जीना ही है तो बोझा ढा के ना जिया जाए बल्कि जिया जाए
जी।
तो ये बड़ी अच्छी है कि हरफन मौला वाली जिंदगी के साथ साथ बहुत सारे आपके अचीवमेंट्स हैं। सुनील जी, आप हमको पहले तो अब ये बताइए कि आपके नाम पे इतने अचीवमेंट्स हैं, अब हम आपकी ज़रा अवार्ड्स की तरफ आते हैं। मेंशन सबसे बड़ा जो है वो राज्यपाल से आपको अवार्डेड अब हैं, तो वो किस एवज में आपको अवार्ड दिया गया था?
शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए हर साल स्टेट अवार्ड निकलते हैं सर, इस साल भी निकला हुआ है। तो उसमें हम लोगों के आप ऐसे काम कर रहे हो, ऐसे काम करने वाले पुरस्कार पा जाते हैं। तो हमसे एक बार मीडिया वाले फ़ोन किए रात को ऐसे, तो कहे सर आपके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, कितना अवार्ड मिला, तो हम कहे सर गिन नहीं पाएंगे कितना अवार्ड है, तो कहें मतलब क्या है, हम कहे सर जब निकलते हैं तो गांव के जो अभिभावक हैं कहते हैं सर जब से आप आए हैं विद्यालय में ये हो गया, हमारे बच्चे ऐसा हो गए, तो हम कह रही हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो कह रहे यार ये तो सही है लेकिन सच में कोई पुरस्कार, हम कह नहीं सर ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं किए भैया हम, तो लोगों ने हमको मोटिवेट किया नहीं फार्म भरिए, काम ऐसे ही काम करने वाले पाते हैं। और सर पिछली बार हमने फार्म डाला और उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 टीचरों की मेरिट बनवाई, सभी 687 फार्म आए थे पूरे यूपी के और 687 में 10 टीचरों को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित होना था, तो 10ों में जो मेरिट बनी तो आपके गोंडा से भी हमारा नाम आया।
क्या
तो
बात है,
ये बहुत एक अलग फीलिंग थी कि देखिए हम कभी सोच नहीं रहे थे कि हाँ 10 लोगों में नाम जाना और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सम्मानित होना, ये बहुत बड़ी बात और सबसे बड़ी ये जीत थी हमारे गाँव की और हमारे गोंडा की और खासकर हमारे उन अभिभावकों और बच्चों की जिनको बदौलत आज हमको सम्मान मिला है।
बिल्कुल सही बात है। और देखिए जो आपने बात की ना कि बच्चों के जो माता पिता हैं वो आपसे मिलके जो अपने बच्चों के बारे में बताते हैं वो आपका सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा है, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से मेंशन करता चला आ रहा हूं। इसके साथ साथ आपके बहुत सारे अवार्ड्स हैं जिनको मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम बताने बैठेंगे तो शायद 5 घंटे का भी टॉक शो हमारा कम पड़ जाएगा। तो कुछ चुनिंदा ऐसी अलग अलग कैटेगरीज के कुछ अवार्ड्स के बारे में आप बताएं कि आपको किस एवज में दिया गया, ताकि जो हमारे बाकी शिक्षक भाई सुन रहे हैं या बाकी जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको इसके बारे में थोड़ा सा जागरूकता हो जाए।
बिल्कुल सर, अभी यूनिसेफ के द्वारा यंग चेंज मेकर सम्मान से सम्मानित किया गया, तो उसमें हमारे दो बच्चे, हमारे हर महीने एक पत्रिका निकलती है बच्चों की अपनी हाथ की बनाई हुई नन्ही उड़ान, तो उसमें बच्चे बनाते हैं अपनी एक बढ़िया से कलाकृति और उसके लिए हमारे यूनिसेफ के द्वारा जब कार्यक्रम हुआ तो हमारे यहाँ की पत्रिका सेलेक्ट हुई, तो दो बच्चों को हमको वहाँ सम्मानित होने का अवसर मिला। और जब वहाँ पर बच्चे सम्मानित हो रहे थे तो वहाँ पर डीएम डॉक्टर शीतल वर्मा जी और यूनिसेफ की जो एसपीओ थी उनके द्वारा पता चला जब बच्चों को सम्मान हो रहा है तो ऐसे शिक्षक जो गाइड करें उनका सम्मान क्यों नहीं होगा, तो हमको तो पता नहीं था हमारा नाम आएगा, तो हमको भी वहाँ यंग चेंज मेकर सम्मान से सम्मानित किया यूनिसेफ के द्वारा, तो बहुत अच्छा लगा कि चलिए बच्चों के माध्यम से हमको सम्मान मिला। ऐसे यहाँ जब हमारे 5 बच्चे सेलेक्ट हुए बाल विज्ञान कांग्रेस के द्वारा तो पता चला कि सीडीओ मैम थी डॉक्टर दिव्या मित्तल जी और साइंटिस्ट एसएम प्रसाद जी जेबी सिंह वहाँ पर डीएम हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा भाई जिनके 5-5 बच्चे सम्मानित हो रहे हैं ऐसे शिक्षक को हम चाहते हैं मंच पर आए, तो हमको भी नहीं पता था कि ऐसे क्या हो रहा है, तो बच्चों के बाद में अगर हमारा सम्मान होता है तो कहीं ना कहीं बहुत फख्र होता है कि इनकी बदौलत आज हमको सम्मान मिला। इसी तरह से कारवा बनता गया, हमको स्मार्ट गुरु अवार्ड अमृतसर में मिला, मध्य प्रदेश में स्मार्ट टीचर अवार्ड मिला जो वहाँ पर डीएमओ और वहाँ के बीएसओ द्वारा सम्मान मिले, और उसके बाद पर्यावरण के क्षेत्र में हम सर खुद काम करते हैं, नर्सरी लगाते हैं, उसके लिए हमको अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा सम्मान नेपाल भूटान बांग्लादेश श्रीलंका के द्वारा मिला।
मतलब आपने यहाँ से ब्लॉक से स्टार्ट करते हुए इंटरनेशनली पहुँच गए हैं,
तो ये कहीं ना कहीं आप सब और लोगों का प्यार उसने था, और लोग कहते हैं कि देखने में तो हम सुनील आनंद हैं लेकिन हम बता रहे हैं कि जितने हमारे पास शरीर में रोम रोम हैं उससे कई गुना लोगों की दुआएं आशीष हैं। और जब गोंडा में हम लोड कराए पुरस्कार के बाद तो यहाँ पर सीडीओ सर, बीएसए सर और यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी हमको सम्मानित किया गया कि आपने गोंडा का नाम गौरवान्वित किया।
बिल्कुल सही बात है, और जो भी इस वक्त हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं उनका फख्र से सीना चौड़ा हो रहा होगा कि गोंडा में भी ऐसे हमारे शिक्षक हैं, क्योंकि गोंडा का नाम शायद ही थोड़ा सा बेहतर चीज़ों में, लोग बहुत बेहतर हैं लेकिन वो चीज़ें बाहर आ नहीं पाती है। अपने रेडियो के माध्यम से ऐसी ही चीज़ों को, ऐसे ही लोगों को बाहर लाना चाहते हैं जो खुद बहुत बेहतर काम कर रहे हैं लेकिन शायद बाकी लोग अभी उनके बारे में सुन और जान नहीं पाए हैं। सुनील जी, एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा, चूँकि बहुत अहम बात है, ये करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि सरकारी विद्यालयों में टीचर्स की कमी होती है, ठीक है, कहीं स्टाफ प्रॉपर होता है कहीं नहीं होता, और एक शिकायत प्रधानाध्यापक या असिस्टेंट टीचर्स की, उनको डॉक्यूमेंटेशन बहुत करना होता है। तो जाहिर सी बात है आप भी एक कॉलेज चला रहे हैं, एक स्कूल चला रहे हैं, तो उसमें आपको भी डॉक्यूमेंटेशन करना ही होता होगा, उसमें तो कोई छूट नहीं होगी सरकार की तरफ से, तो उसको कैसे आप मैनेज करते हैं जबकि इतना सारा आप काम करते हैं, और बाकियों के लिए जिनके साथ ऐसी समस्या है जहां स्टाफ कम है, आपका अगर कोई सुझाव है उन कॉलेजेस और उन टीचर्स के लिए तो प्लीज बताएं।
जी सर, सबसे पहले तो बताना चाहते हैं कि काम करना ही करना है और उसको जुनून के साथ करना है तभी मजा आएगा, और इसके लिए हमने प्रयास किया है कि अपने विद्यालय में हमारे जितने स्टाफों का स्टाफ है और 9 स्टाफ को काम अपना अपना बांट दिया गया है, और जितना भी काम कागजी होता है उसको हम लोग घर पे लाकर कर लेते हैं। कोई टेक्निकल काम अगर है तो बहुत काम हमने स्मार्ट कर दिया है, जैसे मांगा गया तो हम तुरंत उसको डिजिटल बना दिए, तो बहुत काम हमने डिजिटल कर दिया है, तो इससे हमको आसानी होती है। नहीं तो लोग लाइन पारते हैं, पेज लिखते हैं, जैसे अभी कोई उपस्थिति देना हुआ है तो हम उसको तुरंत बनाए, फॉर्मेट फट से उसमें नाम डाले, मंथ चेंज किए, तुरंत प्रिंट आउट दे दिए। तो ये काम बैठ कर कोई लिखता आधा घंटा लगता सोचता, तो बहुत चीज़ें हमने डिजिटल कर दी हैं। उसके साथ साथ अब हमारे जो स्टाफ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, सबका सहयोग मिलता है और हम बहुत भाग्यशाली हैं, इतने अच्छे स्टाफ हैं। क्योंकि जितने लोग हैं सब अपने आप में कहते हैं कि कोई बिल्डिंग खड़ी होती तो हर स्तंभ का अपना महत्व होता है, ऐसे भी जितने भी हमारे स्टाफ हैं सबका अपना रोल है और सब लोग बहुत बेहतर सहयोग कर रहे हैं। हाँ, कहीं दिक्कत आती है तो उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे टेक्निकल बना दें ताकि हमारा सहयोग और मिलता रहे।
बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आप काम कर रहे होते हैं वहाँ आपके सहकर्मियों का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, उसके उनके बीच में सामंजस्य होना बहुत अच्छी बात होती है। तो ये तो बात हो गई, समस्या का आपने समाधान बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बताया। बुक्स भी आप लिखते हैं?
जी सर।
और आपने फिलहाल आप स्टूडियो में साथ आए और एक बुक लेके आए हैं, ज्ञान गुल्लक।
जी सर।
तो इस ज्ञान के गुल्लक के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे श्रोताओं।
ज्ञान गुल्लक एक ऐसी बुक है जिसमें पूरे भारत के जितने नवाचारी शिक्षक हैं सब लोगों ने अपने माध्यम से, जैसे कि किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो उसको गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से कैसे बच्चों को पढ़ाएं। जैसे अभी हमारी उसमें एक लाइनें हैं कि मीना राजू गुड़िया हो, एक जादू की पुड़िया उठाओ, पुड़िया को खोलो, मुझसे को बोलो। तो उसमें कोई बच्चा उठाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई लड़की आई उठाई तो उसमें तुरंत कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो पुड़िया में लिखा है कि मैं बनी हूँ मेरी काम, मुक्केबाजी मेरा काम। तो बच्चों को लग गया कि मेरी काम मुक्केबाजी कर रही, तो याद हो गया। फिर ये दूसरी पुड़िया उठाते हैं, कहते हैं कि पुड़िया में जो है सचिन तेंदुलकर, तो क्रिकेट का लोग मुझे कहते भगवान, कई रिकॉर्ड है मेरे नाम। तो ऐसे ऐसे उसको गीत के माध्यम से हमने जो है जोड़ा है, तो उससे फ़ायदा मिलता है कि बच्चों को गीत के माध्यम से अपने खिलाड़ियों के बारे में कल्प। और आई हूँ थोड़ी देर से अंतरिक्ष की सैर से, कल्पना चावला मेरा नाम, अंतरिक्ष में रहना मेरा काम। तो ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ देते हैं बच्चों को, तो गीत में याद कर लेते हैं। ऐसे उसमें जितनी भी कविताएँ हैं संज्ञा से हैं, वैज्ञानिक खोज हैं, विज्ञान चालसा है, तो ये किताब अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि आधे से ज़्यादा कोर्स उनको कविता के माध्यम से मिल जाते हैं।
क्या बात है, मतलब जिस तरह से आपने बता दिया मुझे भी अब याद ही हो जाएगा, हालांकि काफ़ी सुना हुआ था लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग वे है याद करने का।
जी।
मतलब जो एक बच्चों का कहता है रटना, एक जो बोरिंग सा होता है, शायद इस वजह से कर नहीं पाते हैं, ये बहुत
दूसरी सर बुकारी इनोवेटिव टीचर्स ग्रुप ऑफ इंडिया, पूरे भारत के जितने भी नवाचारी शिक्षक हैं उनके अपने आइडियाज हैं। जैसे हमने कलाम जी पर और शंकर जी पर अपना रिसर्च किया।
जी।
तो बच्चों से पूछा जाता है कि बेटा जो है बताइए कलाम जी के द्वारा बनाई गई मिसालों के नाम, तो बच्चे उसको रटते हैं। तो हमने कहा रटिए मत, अभी हम यहाँ पर टेलम कार्यशाला थे, जिलाधिकारी महोदय थे, उनके सामने प्रेजेंट किया। हमने कहा शंकर जी को आप देखते हैं, उसमें देखिए शंकर जी का कुछ अपना एक विशेष पहचान होता है। तो बच्चे से बताया ये क्या है, तो कहे हाथ में त्रिशूल है, गले में नाग है, हमके खड़े कहाँ रहते हैं पृथ्वी पर, हमके तीसरी आँख खुलती तो क्या निकलता है, अग्नि निकलती है। तो हमके जब अग्नि निकलती है तांडवनित होता है तो पृथ्वी और आकाश सब लगते हैं। फिर हम बच्चों से जोड़ देते हैं कि सबसे पहले क्या बताया था, त्रिशूल, फिर नाग, फिर तीसरी आँख अग्नि, पृथ्वी आकाश। तो इस तरह से पांचों मिसालों को हमने शंकर जी के तस्वीर से जोड़ दिया, तो उनको कभी भूलना नहीं रहता है सर, ये बहुत अच्छा तरीका रहता है। तो ऐसे छोटे छोटे जो नवाचार हैं हम जोड़ते रहते हैं, बच्चों को रटना नहीं पड़ता है।
तो इस तरह से आप बुक्स में बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, इस तरह की और भी कोई बुक्स है?
जी, हौसलों की उड़ान है।
ओके, इसमें क्या है?
इसमें ऐसे ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ हैं, जैसे हमारे यहाँ की लड़की, एक गांव की लड़की, ये राज्य स्तर पर महानिदेशक विजय किरण आनंद द्वारा सम्मानित हुई। कोविड काल में बनाना रहता था, पेंटिंग बना के भेजना रहता था, तो उसमें दो बार गोंडा का नाम आया, दोनों बार हमारे स्कूल के बच्चे सेलेक्ट हुए। तो बहुत अच्छा लगा कि महानिदेशक के द्वारा सम्मान तो हमको पुरस्कार लेने इस साल मिला, लेकिन उससे दो साल पहले हमारे बच्चे वहाँ सम्मानित हो चुके थे। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि हम जो प्रयास करते हैं तो बच्चे जो पेंटिंग के माध्यम से, कविता के माध्यम से लिखते रहते हैं, हमारे बच्चे भी कविता लिखते हैं सर।
बच्चे भी कविता लिखते हैं सर, आपने इतना क्रिएटिव बना दिया है।
और हमारी ये जितनी कविताएं हैं बेटी बचाओ पर भी हैं, वो भी यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। हमने शिक्षा पर भी लिखा है, स्कूल चलो अभियान पर, वो भी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आनंद की पाठशाला चैनल हमारा है। और उसमें देखते हैं कि अभी देखिए स्कूल चलो अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ही गीत बजे हुए हैं, क्योंकि अवधि में हैं।
क्या बात है, आपने अभी एक नाम लिया यूट्यूब पे, कौन से किस नाम से है चैनल आपका?
सुनील आनंद की पाठशाला।
सुनील आनंद की पाठशाला, तो उस पे बच्चों को या पेरेंट्स को क्या मिलने वाला है?
उससे बच्चों को, पेरेंट्स को, जैसे हमारे जो आइडियाज हैं पढ़ाने का अपना, उसको हम शेयर करते रहते हैं। कोई शिक्षक देख सकता है बड़े आराम से, और बच्चे भी, जैसे हमको ये बनाना नहीं चाहिए था लेकिन जब हम ICT अवार्ड पाए तो हमारे सर बताए, जो हमारे HOD और वहाँ पर JD सर थे, अजय सर, उन्होंने कहा, सुनील जब काम अपने बच्चों पर करते हैं तो आपके 40 बच्चे लाभान्वित होते हैं, लेकिन किसी चीज़ को आप अगर YouTube पर डाल दिए तो पूरे भारत को नहीं विश्व के लोग लाभान्वित हो सकते हैं। इसी तरह से उनको हमको उन्होंने मोटिवेट किया और इस तरह से हमारे कई वीडियो सेलेक्ट हुए और आज दीक्षा पे भी सिलेक्ट हो रहे हैं, प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को भी लोग बहुत देख चुके हैं।
क्या बात है, तो मतलब अब तो आप आने वाले टाइम में एक सफल यूट्यूबर तो आप बन ही जाएंगे, मुझे लगता है कि उसका भी आप अवार्ड ले जाएंगे।
वो अवार्ड के लिए बस साझा कर रहे हैं कि जो बच्चे हमारे नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भी वहां तक।
नहीं, बहुत अच्छी बात है और मैं तो चाहूंगा कि उसमें भी आप अवार्डेड हों, क्योंकि ये भी आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके जो मेंटर्स ने बताया कि कहीं ना कहीं आपके बच्चों से निकल के भी अब ये आपकी जो प्रैक्टिस है ये बाकी लोगों तक जाए, क्योंकि बहुत से लोग चाहते तो हैं करना लेकिन जैसे कोई गाइडेंस नहीं मिल जाता है।
जी जी।
तो आप एक उनके लिए एक एग्जांपल हैं, एक उदाहरण है जिनको फॉलो करके वो भी अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके और इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। ये हुई आपसे बहुत सारी बातें और यकीन मानिए आज के इस टॉक शो में मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि ये एक घंटा बहुत कम था। इवन आपके साथ मुझे लगता है आगे भी बातचीत करनी पड़ेगी कुछ मुद्दों को लेके, क्योंकि आपका ज्ञान काफ़ी अच्छा है और काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी इजी वे में आप हमसे बात कर रहे हैं, जो कि हमारे श्रोताओं को भी बखूबी समझ में आ रहा होगा। जाने से पहले हर गेस्ट से एक क्वेश्चन लास्ट जो हम करते हैं, सो आज से आपका भी हम आपसे ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि देवी पाटन मंडल और गोंडा का पहला एफएम है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, इसको लेके क्या लगता है, इसको आने के बाद गोंडा को लेके गोंडा में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या बदलाव होने वाला है?
बहुत अच्छा सर सवाल। जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ था हम आए हुए थे और पता चला कि एक उम्मीदें हम लोग फैजाबाद एफएम सुनते थे, गोंडा में कभी सोचा नहीं गया था। इतना बेहतर प्रयास आप लोगों ने किया है, मैं पुनः पूरे टीम को बधाई देना चाहता हूँ और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि इसके माध्यम से जो गाँव की अपनी महक है और जो गोंडा की अपनी खुशबू है, देवपाटन मंडल की अपनी पहचान है, ये पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में बिखेर रहे हैं। पूरे टीम कि इस प्रयास के लिए हम जितना तारीफ करें वो कम है। बस यही कहना चाहते हैं कि कुछ लोग हैं जो वक्त के साँचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के साँचे बदल गए, तो ऐसा काम हमारे इस टीम के लोगों ने किया है कि आपने गोंडा को बहुत बड़ी नसीहत दी है सर।
क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इन अल्फाजों ने हमारे लिए भी एक हम में ऊर्जा भरी है और आप जैसी जब पर्सनैलिटी से हम रूबरू होते हैं तो हमको लगता है कि हम अपने विजन और मिशन में जो हम सोच के काम कर रहे हैं गोंडा के लोगों को बदलने का, गोंडा को आगे ले जाने का जो प्रयास कर रहे हैं अपने प्यारे गोंडा वासियों के साथ,
जी
तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आते हैं और अपने बारे में बताते हैं, क्योंकि आपसे न जाने कितनी चीज़ें हमको भी सीखने को मिलती है और हमारे श्रोताओं को भी जानने को मिलती है। सो ये थे हमारे बीच में सुनील कुमार आनंद जी, जो कि प्रधाना अध्यापक हैं कंपोजिट विद्यालय बाबा मठिया ब्लॉक वजीरगंज जिला गोंडा से। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारे श्रोताओं को मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों को भी हमारे सुनील जी की बातें अच्छी लगी हैं या समझ आई हैं या कुछ भी इंस्पिरेशन मिली है, प्लीज़ वो हमारे ऐप पे आके चैट बॉक्स में कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताएं कि आज का टॉक शो आपको कैसा लगा। सुनील जी एक बार आपको बहुत बहुत शुक्रिया फिर से।
धन्यवाद सर,
थैंक यू सो मच। और अपने श्रोताओं से हम यही कहेंगे कि कल फिर से हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ, उनकी बातों को लेके उनके बारे में जानेंगे, तो तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।